कृपा कर पाता है। और अपनी सेवा वही है कि अपने को परिस्थितियों का गुलाम न बनाए, परिस्थितियों की दासता से मुक्त करे, वही स्वतंत्र व्यक्ति है। स्वतंत्र है वही सेवा कर सकता है। पद या कुर्सी मिलने से सेवा होगी और बिना कुर्सी के सेवा नहीं होगी, ये ना समझी है। जो अपनी सेवा कर सकता है वो विश्व की सेवा कर सकता है, चाहे उसके पास रुपया पैसा नहीं हो, फिर भी वो सेवा कर सकता है। किसी को रोटी खिलाना, वस्त्र देना, इतना ही सेवा नहीं है। किसी को दो मीठे शब्द बोलना, उसके दुख को हरना, ये बड़ी सेवा है। निगुरे को गुरु के द्वार पर पहुंचाना, ये बड़ी सेवा है। असाधक को साधक बनाना, ये भी सेवा है। अनजान को जानकारी देना, ये भी सेवा है। भूखे को अन्न देना, ये सेवा है। प्यासे को पानी देना, ये सेवा है। अभक्त को भक्त बनाना, ये सेवा है। उलझे हुए को ही उलझने मिटाना, ये सेवा है। और जो देता है वो पाता है। जो दूसरों को कुछ न कुछ देता है, और नहीं तो दो मीठे शब्द ही सही, और नहीं तो दो भगवान की बात ही सही। और सेवा में जो बदला चाहता है वो सेवा के धन को कीचड़ में डाल देता है। सेवा करें और बदला कुछ मिले, हमारा यश हो, हमें पद मिले, हमें मान मिले, तो वो सेवक व्यक्तित्व बनाना चाहता है। और व्यक्तित्व हमेशा सत्य से विरोध में खड़ा रहेगा। व्यक्तित्व सत्य से विरोध में खड़ा रहेगा तो सत्य स्वरूप से सेवा नहीं करने देगा। जो सच्चाई से सेवा नहीं करने देगा तो सच्चाई से मुक्ति भी नहीं पाने देगा। सच्चाई तो यह है कि सेवा के बदले कुछ न चाहना। जब कुछ न चाहेंगे तो जिसका सब कुछ है वो संतुष्ट होगा, अपना अंतर आत्मा तृप्त होगा, खुश होगा। जब अंतर आत्मा तृप्त होगा, खुश होगा, तो फिर सब कुछ न चाहने वाले को तो सब कुछ मिलता है। जो किसी को प्रेम करता है वो किसी को द्वेष करेगा। जो कुछ चाहता है वो कुछ गंवाता है, लेकिन जो कुछ नहीं चाहता वो कुछ नहीं गंवाता। और जो किसी को प्रेम नहीं करता वो सबको प्रेम करता है, और जो सबको प्रेम करता है वो किसी व्यक्तित्व में परिस्थितित्व में बंधता नहीं है, और वो निर्बंध हो जाता है। तो जो निर्बंध हो जाता है दूसरों को भी निर्बंध करने का सामर्थ्य उसका निखरता है। जो निर्दुख हो जाता है वो दूसरों के दुख दूर करने में सक्षम हो जाता है। जो निरहंकार हो जाता है वो सच्ची सेवा में सफल हो जाता है, औरों को निरहंकार होने के रास्ते पे ले जाता है। तो सच्ची सेवा का उदय उसी दिन से होता है कि सेवक प्रण कर ले के मुझे इस मिटने वाले नश्वर शरीर को, कब छूट जाए कोई पता नहीं, इस नश्वर शरीर से तन, इस नश्वर तन से अगर हो सके शारीरिक क्षमता है तो तन से सेवा करूंगा, और भाव सबके लिए अच्छा रखूंगा ये मन से सेवा कर, और लक्ष्य सबका हाँ ईश्वरीय सुख बनाऊंगा ये बुद्धि से सेवा करने का निर्णय कर ले, और बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए क्योंकि शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, बुद्धि प्रकृति का है, और जहाँ सेवा कर रहे वो संसार प्रकृति का है, संसार के लोग प्रकृति के हैं, संसार की परिस्थिति प्रकृति की है। तो प्रकृति की चीज प्रकृति में अर्पण कर देने से आप प्रकृति के दबाव से और प्रकृति के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। जब प्रकृति के दबाव से और प्रकृति के आकर्षण से मुक्त हुए तो आप परमात्मा में टिक गए। जो आपका स्वतः स्वभाव था आप उसमें टिक गए, उसके आनंद में आप आ गए। ये एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन रोज ये मन को बताए कि हमको तो सेवा करनी है। सेवा लेने वाला गुलाम रहता है और सेवा करने वाला स्वामी हो जाता है। सेवक ना आए तो स्वामी लाचार होता है कि अरे आज फलाना नहीं आ रहे, वो आया नहीं। लेकिन जो सेवा करता है वो स्वामी आए चाहे ना आए, सेवक तो अपना उनकी पराधीनता महसूस नहीं करता है। नौकरानी की याद में सेठानी दुखी होती, लेकिन सेठानी की याद में नौकरानी दुखी नहीं होती। नौकरानी तो रुपयों की याद में दुखी हो सकती है, सेठानी की याद में नौकरानी की दुखी नहीं होती। सेवा लेने वाला भले सेवक को याद करे, लेकिन सेवक करने वाले की गाड़ी तो ऐसे ही चल जाती है। तो ईश्वर के नाते सेवा करें और उस सेवा में और सुगंधि लाएं। कि ईश्वर के नाते सेवा करो, जिसकी भी सेवा करते हैं वो सब ईश्वर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। आप जिस किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हो तो समझो उसके अंदर बैठे हुए ईश्वर को आप नीचा दिखाना चाहते हो। जिस किसी व्यक्ति की ईर्ष्या करते हो तो समझो व्यापक ईश्वर सब में बैठा है, तो ईश्वर के उस अंग की उस खंड की आप ईर्ष्या करते हो। तो हमारे चित्त में अपना अहंकार पोषने की और दूसरे को नीचे दिखाने की और सेवा का प्रदर्शन करने की जो आदत है या कमजोरी है उसको निकालने से हमारी सेवा सेव्य को प्रकट कर देगी। निष्काम कर्म योग अपना स्वतंत्र योग है। जैसे तत्व ज्ञान ज्ञान योग सांख्य योग मुक्ति देने में स्वतंत्र है, ऐसे ही भक्ति ध्यान योग भी मुक्ति देने में स्वतंत्र माना गया। ठीक ऐसा ही दर्जा है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग भी स्वतंत्र है, मुक्ति देने में स्वतंत्र है। अपने स्वार्थ को पोषने का, अहंकार को पोषने का या अपनी दूषित वासनाओं को पोषने का, जो भी खूने खांचरे में वासना या बेवकूफी या भाव है उसको उखाड़ के फेंक दे। बड़े बड़े योगियों को समाधि करने से जो सुख मिलता है वो सुख सतियों को अपने घर में ही मिला। बड़ा बड़ा सामर्थ्य जिन योगियों के जीवन में सुना जाता है उससे भी बड़ा चढ़ा सामर्थ्य सतियों के जीवन में सुना गया। सतियों ने क्या किया, सतियों ने अपनी इच्छा छोड़ दी, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। पति की इच्छा में, पति के संतोष में, पति की खुशी में अपनी खुशी को मुख रख दिया। पति की बस मेरी इच्छा नहीं, पति की इच्छा। पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने से उनकी अपनी इच्छाएं हटती गई, अपनी इच्छाएं हटती गई और उनकी सेवा चमकती गई और वे सतियां ऐसी ऐसी महान हो गई कि सूर्य की गति को थाम दिया। शांडिली थी, शांडिली का रूप लावण्य सौंदर्य देखकर गालब ऋषि और गरुड़ जी मोहित हो गए कि ऐसी तेजस्विनी, ऐसी सुंदरी इस धरती पर और तपस्या कर रही, नहीं नहीं तू तो भगवान विष्णु की भार्या होने के योग्य है, विष्णु भगवान से तेरा विवाह करेंगे। शांडिली ने कहा नहीं नहीं मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत पालना है। शांडिली तपस्या में लग गई, ध्यान भजन में लग गई, अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप की तरफ यात्रा करने लग गई। गरुड़ और गालब को हुआ कि इतनी तेजस्वी सुंदरी मानो अप्सराओं को भी मात कर दे ऐसी धरती की युवती, कहीं तपस्या तपस्या में जोगन बन जाएगी तो फिर बात मानेगी नहीं, इसको उठा ले जाए और जबरन भगवान विष्णु के पास पहुंचा दें और वहां शादी करा दें। एक प्रभात को गालब और गरुड़ आए शांडिली को उठा के ले जाने के लिए और शांडिली की दृष्टि पड़ी कि इनकी अपने लिए तो नहीं लेकिन अपनी मनमानी इच्छा पूरी करने के लिए इनकी नियत बुरी हुई है। जब मेरे में इच्छा नहीं तो मैं किसी के इच्छा से क्यों दबूं? मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत पालना है और ये मुझे जबरन गृहस्थ में घसीटते हैं। विष्णु की पत्नी मुझे पत्नी नहीं होना है, मुझे तो अपने स्वस्वभाव को पाना है। पत्नी शब्द प्रकृति है, प्रकृति में जन्मना मरना नहीं है, मुझे तो प्रकृति के आधार को जानना पहचानना है। और ये क्या कर रहे हैं मुझे निराधार बनाने के लिए? शांडी जी ने गरुड़ तो बलवान था और गालब भी कम नहीं थे, लेकिन शांडिली की निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ परमात्मा में विश्रांति की यात्रा ने उसको ऐसा तो भर दिया था शांडिली ने, देखते देखते उन पर पानी का छींटा मारा। गालब तुम गल जाओ और गालब को सहयोग देने वाले गरुड़ तुम भी गल जाओ। उन दोनों के शरीर महसूस हुआ कि उनकी शक्ति क्षीण हो गई, मानो वो गल ही रहे हैं भीतर भीतर से। बड़ा प्रायश्चित किया, क्षमा याचना की, तब कहीं उस भारत की कन्या ने उनको माफ किया और जैसे थे वैसे बना दिए और अपनी शक्ति बचाकर भागे। जिसमें निस्वार्थता होती है और ब्रह्मचर्य का संयम होता है, उसके आगे प्रकृति के नियम भी बदलने को राजी हो जाते। जो रुग्ण मन का अनुसंधान करके मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि काम आए तो कोई बात नहीं, रोको मत, संभोग से समाधि की ओर जाओ, तो वो बेचारे विज्ञानियों के जो किताब हैं और आचार्य ने या विद्वानों ने पढ़े, तो विज्ञानियों का आविष्कार अन्वेषण था रुग्ण मनों का अध्ययन करके। तीन प्रकार के रुग्ण मन होते और दो प्रकार के स्वस्थ मन होते हैं, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़। ये रुग्ण मन होते हैं और आम आदमी के रुग्ण मन होते ही हैं निरुद्ध और एकाग्र, ये स्वस्थ मन होते हैं। और स्वस्थ मन था अर्जुन का, अप्सराएं गिड़गिड़ाई उर्वंशी, लेकिन अर्जुन ने कमर नहीं तोड़ी अपनी। स्वस्थ मन था युधिष्ठर का, कई परिस्थितियां आई लेकिन युधिष्ठर अडिग रहे हैं। स्वस्थ मन था जनक का, कई विक्षेप का अवसर और भोग वासना में गिरने का अवसर आया, लेकिन जनक भोग में रहते हुए भी योग में रहे, ये स्वस्थ मन है। तो स्वस्थ मन का अध्ययन करके, अनुसंधान करके विज्ञानी अगर आविष्कार करते, घोषणा करते, तो वो ये नहीं कह सकते कि काम न रोको, क्रोध को न रोको, आवेग है उनको गुजरने दो, आने दो, ऐसा नहीं कहते हैं। अपितु ये कहते काम को रोको, क्रोध को रोको, युक्ति से रोको। लेकिन उनको अगर कोई और सतगुरु मिल जाए तो वो उन वे सज्जन वो भी कह देंगे कि काम को रोकना पर्याप्त नहीं है, काम की जगह पर राम को प्रकट करो, क्रोध की जगह पर क्षमा और सहानुभूति को प्रकटाओ, यही तुम्हारे में विशेष क्षमताएं हैं। झूठ न बोलो ये तो ठीक है, सत्य बोलो ये भी ठीक है, लेकिन स्नेह भरा बोलो, चोरी न करो ये तो ठीक है, लेकिन जहां चोरी करने की आदत है वहां दान करो, उदार बनो, दो। आपके पास शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, बौद्धिक बल हो, जितना हो, चाहे मुट्ठी भर हो, जितना भी हो, उसे आप ईश्वर के विराट सृष्टि में ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग मतलब सेवा करो। आपके पास जितना थोड़ा से थोड़ा भी है उसको ईमानदारी से सेवा के लिए लगाओ, वो आप पाओगे कि जो जो आप अपनी योग्यता सेवा में लगा रहे और बदले में कुछ नहीं चाहते, त्यों त्यों आपकी योग्यता जादुई ढंग से बढ़ती जाएगी। देखें बढ़ती है कि नहीं, ऐसा अधैर्य मत करो। बड़े न बड़े हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो योग्यता है देने वाले की है और देने वाले की सृष्टि संवारने के लिए है, देने वाले की सृष्टि की सेवा करने के लिए। न सेवा का बदला चाहो और न सेवा का प्रचार चाहो, न सेवा का दिखावा चाहो, आपके हृदय की शांति और समझ सूझबूझ बढ़ती जाएगी और आदर्श सेवक हनुमान हो गए। इसी ढंग से अपने को देखने की इच्छा करो। सेवक और मान चाहे, सेवा के बदले में मान चाहे, सेवा को बेच रहा है, फेंक रहा है, शरीर का अहंकार पोषाने के लिए सेवा को नष्ट कर रहा है। सेवक और मान की इच्छा, सेवा करोगे लोग मान देंगे लेकिन आपको उस मान से कोई फायदा नहीं होता, अपितु तो अहंकार जगने का अवसर आता है। सेवा के बदले में मान न चाहो, सेवा के बदले में भोग न चाहो, सेवा के बदले में दूसरे को दबाने की क्षमता न चाहो। सेवा करते जाओ, जो तुम्हारा हरीफ है उसका हृदय भी जीतो, हरीफ जिस कारण से दुखी है वो कारण हटाते जाओ, तुम्हारा दुश्मन जिन कारणों से दुखी है वे कारण आप हटाते जाओ, दुश्मन की भी सेवा करो, फिर देखो वो दुश्मन पर आपकी कैसी विजय होती है। दुश्मन को मार देना ये दुश्मन पर विजय नहीं है, दुश्मन का गला दबा देना या नीचे गिरा देना ये दुश्मन की विजय नहीं, उसमें दुश्मनी तो बनी रहेगी। दुश्मन को अगर जीतना है तो दुश्मन जिन कारणों से दुखी है वे कारण हटाना शुरू करो। ये ऐसी सेवा है महाराज, गजब कर देगी, आपको स्वामी पद पे बिठा देगी, आप विश्व जीत हो जाएंगे। दुर्योधन युधिष्ठिर को दुश्मन मानते थे लेकिन दुर्योधन कहते थे कि युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। अगर फंस जाते दुर्योधन, कोई निर्णय नहीं कर पाते तो युधिष्ठिर से निर्णय करवाते। दुर्योधन युधिष्ठिर का भगत था भीतर से, जयराम जी की, ऐसा कह लो कि दुर्योधन युधिष्ठिर का शिष्य हो गया था भीतर से, शाकुनी युधिष्ठिर का शिष्य हो गया था भीतर से। रावण राम जी का विरोधी था लेकिन राम जी यथा योग्य रावण की खिदमत करते हैं, उसको स्वधाम पहुंचाना ये भी राम जी के चित्त में द्वेष नहीं है, खिदमत का भाव है, नहीं तो हार्ट अटैक कर देते और उपाय से बुरी तरह मारते नहीं। मौका दिया, अवसर दिया, तो अगर जरूरत पड़ती है किसी को कुछ करने की तो भी अंदर में द्वेष रख कर नहीं, जैसे राम जी उसकी खिदमत की भावना से युद्ध करके उसे स्वधाम भेज देते। तो सेवक को विघ्न बाधा आए और जो तत्व विघ्न बाधा डालते हैं तो उन तत्वों की बुराई नहीं लेकिन उन तत्वों का जिसमें भला हो ऐसी कोशिश करें, उनकी वासना और उनका अहंकार घटे ऐसी कोशिश करें, खिदमत भाव से उन तत्वों को, उन विरोधों को हटाए तो वो सेवक सेव्य पद को पा लेगा। गुरुलोक शिष्य को डांटते हैं, गुरुलोक शिष्य को निकाल देते हैं, गुरुलोक शिष्य को भर सभा में उठ बैठ कराते हैं, ऐसा भी आपने देखा है, हमने भी देखा है, हमने हमारे गुरुदेव के चरणों में देखा है, आपने मेरे संपर्क में देखा है, लेकिन मेरे हृदय में उनको खुले आम उठ बैठ कराना या डांटना द्वेष बुद्धि नहीं है, अपितु उनमें जो दुर्गुण है जो उनको ऊपर उठाने से रोकते हैं, खुले आम उनको वाहवाही मिलती है तो फिर अकेले में उनको कहते हैं तो उनके अहंकार में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए खुले आम उनको उठ बैठ करा देते ताकि उनका खुले आम अहंकार विदा हो जाए। मेरे गुरुदेव अपने एकदम निकटवर्ती सेवक को खुले आम उठ बैठ कराते, डांटते। एक बार सेवक ने पूछा कि स्वामी जी आप कृपालु तो हैं, ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप नाराज होते हैं तो छक्के छुड़ा देते हैं, स्वामी जी आप अगर डांटे या कुछ हमारी गलती बताएं तो हमको एकांत में कह दें, दिन भर आपकी सेवा में रहते। जब सभा भरती सत्संग होता है आपके हाथ में माइक आती है तभी आप हमको बोलते हो, बिना माइक के कह दिया करो गुरुदेव, सहा नहीं जाता। कहां तो इतने लोग हमको पूछते जानते और इतने लोगों के बीच आप हमको माइक। गुरु ने फिर करुणा की डांट बरसाते हुए कहा कि बेवकूफ गधा, पता नहीं है तेरे को वीरभान का बच्चा, वाहवाही लोगों के बीच होती, फुगा लोगों के बीच भरता है तो फिर हवा लोगों के बीच क्यों नहीं निकलेगी। यही तरीका है बेटा, तेरे को पता नहीं है। वो जो वीरभान लड़का था वो सब्जी बेचने की लारी चलाता था और खूब सुल्फे पीता था। वो तो खुद बोलता था मैं छटांग छटांग अभी मुड़ा देता था, चरस गांजा गांजा बोलते जब मैं ऐसा था। और देखो धीरे धीरे स्वामी के पास आया हूँ, स्वामी जी का अंगद सेवक हो गया हूँ। देखो संत कितने दयालु है, वो ऐसी प्रशंसा भी करता था और कभी कभी ऐसा जुनून चढ़ जाता था उठा के बिस्तर बोरी कर नहीं नहीं रहना है, 10 साल में क्या मिला है तुम्हारे पास, हम जाते। तो स्वामी जी बोलते ले जाओ साले को उठा के, 1 मिनट मत रखो, हणस गड्डियों बहना के निकालो आश्रम से इसको। वो आश्रम से निकल के बोरी बिस्तर बांध के रवाना होता तो बोलते अकेला जाएगा फिर लौट के आएगा हरामी, जाओ ये पैसे लो, इसको बस स्टैंड पे जाके बस में धक्का मार के घुसड़ के फिर आना। और साइड में उसको बोलते कि अगर सचमुच जाता है ना तो धीरे धीरे समझा के ले आना। अगर सचमुच चला जाए तो फिर चर शपिंग पिएगा, लारी चलाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर अहंकार मिटाने के लिए अपन ये करते हैं, अगर देखो अपन ध्यान रखना कि सचमुच जाए तो फिर समझा के ले आना। अब देखो बाहर से कितने कठोर और अंदर से कितने करुणामय है। ऐसे स्वामी की विजय हुई और ऐसा सेवक सफल जीवन बिता गया। अब जैसे साधुओं की पूजा होती है ऐसे ही सब्जी चलाने वाले और गांजा चरस फूंकने वाले व्यक्ति की आदिपुर में ऐसी पूजा हो रही है। जो लोग लीलाशाह बापू का दर्शन करते हैं वो लोग लीलाशाह के हनुमान का दर्शन भी करते हैं, मत्था टेकते हैं, ये स्वामियों ने स्वामी बना दिया हमारा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। श्री कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर करने योग्य कर्म करता है फल की आकांक्षा नहीं, सेवा करता है लेकिन वाहवाही की आकांक्षा नहीं, सेवा करता है लेकिन दिखावे की इच्छा नहीं, सेवा करता है लेकिन बदले में सेवा चाहता नहीं है, सेवा करता है बदले में मान चाहता नहीं, सेवा करता है लेकिन दूसरे को हीन दिखाकर आप श्रेष्ठ होने की बेवकूफी नहीं करता है, ऐसा जो सेवक है उसे तुम सन्यासी समझो, उसे तुम अर्जुन योगी समझो। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल की आशा न रखे। कार्यम कर्म करोति यः, करने योग्य। ऐसा नहीं कि सेवा का मतलब है कोई चाहता कि भाई हमें पिक्चर में जाना है आप जरा लिफ्ट दीजिए, तो उसको पिक्चर में न जाए उसका भला हो इसलिए लिफ्ट देने कोई देता हो तो वहां रोकना ये भी सेवा है। जयराम जी की, भाई मेरे को जरा फलानी पार्टी में जाना है और पैसे नहीं है, आप जरा थोड़ा, आप तो जाने माने स्वामी जी के शिष्य हो, थोड़ा मेरे को 200 रुपया दो ना, हमें जरा फलानी पार्टी अटेंड करनी। तो आप तो नहीं तो दूसरा कोई देता हो ना उसको भी बोल देना भाई पार्टी अटेंड करेगा चिकन की, इसमें इसका आहित है, कृपा करके आप उनको ना दें तो अच्छा है, ये भी एक सेवा है। उसको पतन करने में आप विघ्न डाले ये भी सेवा है। और ईश्वर के रास्ते जाते हैं जाने में वो न भी मांगे फिर भी आप सहयोग करें ये भी एक सेवा है। सामने वाले की उन्नति किस में होगी ये ख्याल करके जो जो कुछ चेष्टा करना है और बदला न चाहना इसका नाम सेवा है। भले उस वक्त वो आदमी आपको शत्रु मानेगा, लेकिन आपका जो शुद्ध भाव है देर सवेर वो आदमी आपका ही हो जाएगा। मेरे अपने आप के कितने ही हो गए, क्या मैंने जादू मारा है या मैंने कोई मेरे पास कोई कुर्सी है या मेरे पास कोई बाहर का प्रलोभन है? नहीं, मेरे पास वो है कि जो आता है उसका कैसे मंगल हो, ये भाव मेरे मन में उठते रहते। लाइन में आते हैं दर्शन के बहाने, तभी भी देखता हूं किसी को साकर बूटी की जरूरत है, किसी को अमुक पुस्तक की जरूरत है, किसको खाली मुस्कान की जरूरत है और किसी को डांट की जरूरत है। जिसको जो जरूरत है भगवान उनका कराता है, मेरा इसमें क्या होता है? देने वाला दे रहा है दिन और रैन, लोक मुझे दानी कहे उस लिए नीचे नैन, ऐसा एक दाता ने कहा, वो बात भी हमें याद रहती। तो देने वाला परमात्मा ही दे रहा है, दिन रैन दे रहा है, मति को शक्ति वही दे रहा है, मन को प्रसन्नता वही परमात्मा दे रहा है, शरीर को सामर्थ्य उसी की सृष्टि से आ रहा है। तो इसमें अपना क्या है, बस अपना कर्जा चुकाओ, बस ऋण मुक्त हो जाओ। ऋण मुक्त हो गए तो जन्म मरण मुक्त हो गया। विवेकानंद बोलते थे तुम सेवा करते तो ये ना करो, सोचो कि ये दीनहीन है और मैं नहीं होता तो इन बिचारों का क्या होता। नहीं नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है और सेवा लेने वाले की। सेवा लेने वाले की भी कृपा है कि हमें अवसर दे रहा है, ऐसा मानो। ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी उसकी कृपा है, और ईश्वर ने हमें सेवा करने की क्षमताएं दी वो उसकी ईश्वर की कृपा है। और कोई हमारी सचमुच में सेवा ले रहा है सतमार्ग पे तो उसको भी धन्यवाद है, नहीं तो गाड़ी में लोग नहीं बैठे तो गाड़ी किस काम की, सड़क पर लोग नहीं चले तो सड़क किस काम की। ऐसी हमारी वस्तुओं का योग्यता का लोगों के लिए उपयोग नहीं हुए हो तो वस्तु और योग्यताएं किस काम की। अपनी वासनाओं को बढ़ाने में अगर वस्तु योग्यताओं का उपयोग होता है तो हम तो बर्बाद हो गए। अपना अहंकार बढ़ाने में वस्तु और योग्यता का उपयोग होता है तो हम तो बर्बाद हो गए। हमें तो आत्मिक आबादी चाहिए। तो हिटलर सिकंदर जैसे तैसे आदमी नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन सेवा के बदले वस्तु और योग्यता को अहंकार बढ़ाने में लगाने की थोड़ी सी गलती की उन्होंने, और इससे बड़ी गलती कोई होती नहीं है। रावण और कंस क्यों विफल गए और क्यों अभी तक फटकार पाते हैं कि बस उनमें योग्यताएं बहुत सारी थी, वस्तुएं बहुत सारी थी, लेकिन वो अहंकार विसर्जन करने में, सेवा में नहीं लगाकर अहंकार को पुष्ट करने में और वासनाओं को भड़काने में लगाई, इसीलिए वे विफल है। राम जी के पास और कृष्ण के पास जो वस्तु और योग्यताएं थी वो सेवा में लगा दी तो राम जी और कृष्ण जी अभी तक भारत के हर दिल पर राज्य कर रहे हैं। धरती पर कई राजा आए कई चले गए, लेकिन दो राजाओं का नाम अभी भी भारतवासियों के हृदय पर है, वो राजा रामचंद्र और भगवान राजा कृष्णचंद्र, उनका राज्य है। क्योंकि वो भलाई ही अपनी वस्तु और अपने योग्यता का सदुपयोग करने की कला थी उनमें। ऐसे जनक राजा का और महात्माओं का भी भारतवासियों पर राज्य है। गांधीनगर की कुर्सी पर जाए किसी का राज्य हो, भोपाल की कुर्सी पर, दिल्ली की कुर्सी पर चाहे किसी का राज्य हो, लेकिन भारत के दिल की कुर्सियों पर अभी भी भारत के निष्काम कर्मयोगी संतों का ही राज्य हो रहा है। बस ये प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर आप लोग भी अपने जीवन में जो सेवा करते हैं वे भाग्यशाली तो हैं, लेकिन असावधान न रहें, सावधान रहें कि सेवा का बदला अगर लिया तो सेवा सेवा ही नहीं रही। सेवा से अगर दूसरा हमारी सेवा करे ये चाहा तो दुकानदारी हो गई, और सेवक के अंतःकरण में ईर्ष्या नहीं होती। सिंधी संत हो गए, स्वामी साहब उनका नाम था, उन्होंने श्लोक बनाए, वो ग्रंथ का नाम है स्वामी जा श्लोक, स्वामी के श्लोक ग्रंथ का नाम है। उन्होंने लिखा है सेवा सच उस ग्रंथ में, सेवा सच मां जिन लधो लधो लाल अणमलो, से स्वामी सच्ची सिक सा सदा सेवा कन, लत्ता मुक्का मोचड़ा सदा सिर सहन रत्ता रंग रहन अठई पहर अजीब जे। सच्ची सेवा से जिन्होंने पाया लाल अनमोल लाल पाया, आत्म लाल पाया, आत्म सुख पाया, आत्म संतोष पाया, वे तो सदा सच्चाई से सेवा करते हैं और सेवा के बदले में कभी किसी की गुरु की या माता पिता की लात सह लेते हैं तो कभी कोई खट्टी बात भी सह लेते हैं, फिर भी हंसते हंसते सेवा करते रहते हैं जिन्होंने सेवा का मूल्य जाना है। जो सेवा के द्वारा कुछ चाहता है वो तो सेवा के नाम को कलंकित करता है और जो सेवक होकर सुख चाहता है वो भी सेवा के महत्व